नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। सरकार ने आयकर नियम 2026 अधिसूचित कर दिए हैं। ये नियम 1 अप्रैल से प्रभावी होंगे। नए नियमों का उद्देश्य अनुपालन को बढ़ाना और नियमों की संख्या कम करके कर प्रक्रियाओं को सरल बनाना है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि नए नियमों के तहत कंपनियों को लाभांश का भुगतान केवल देश के भीतर ही करना होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल नई दिल्ली में आयकर अधिनियम 2025 पर देशव्यापी जागरूकता अभियान प्रारंभ 2026 की शुरुआत की। ये अभियान प्रिंट, रेडियो, टेलीविजन, आउटडोर, डिजिटल और सोशल मीडिया के अंतर्गत चलेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि आयकर अधिनियम 2025 से त्रुटियां, विवाद और अनुपालन लागत कम होगी।
इनकम टैक्स एक्ट,
आयकर अधिनियम 2025 स्पष्ट रूप से 1961 के अधिनियम का स्थान लेगा। ये सरल, निष्पक्ष और स्पष्ट है। इसमें जनता के लिए कई सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं, जो निश्चित रूप से भारत को एक कर अनुकूल देश के रूप में स्थापित करने में सहायक होगी। इसके साथ कई और भी उपाय हैं, लेकिन उन पर चर्चा बाद में होगी।
मेनी मोर थिंग्स टू गो अलोंग विद इट, बट दैट्स फॉर अ बिट लेटर।
कांग्रेस ने असम विधानसभा चुनावों के लिए 7 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। पार्टी ने जलुकबारी से बिदिशा नियोग, विश्वनाथ से जयंता बोरा और हैलाकांडी विधानसभा क्षेत्र से राहुल रॉय को उम्मीदवार बनाया है। पार्टी ने राज्य में अपने सहयोगी रायजोर दल के लिए 11 सीटें छोड़ी हैं। 126 सदस्य असम विधानसभा के लिए 9 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। मतगणना 4 मई को होगी। निर्वाचन आयोग ने असम, केरलम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल तथा पुदुचेरी में आगामी विधानसभा चुनाव और 6 राज्यों में होने वाले उपचुनावों के लिए इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया पर राजनीतिक विज्ञापनों को विनियमित करने का आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार सभी राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों, व्यक्तियों या संगठनों को विज्ञापन प्रकाशित करने से पहले मीडिया प्रमाणीकरण और निगरानी समिति से अनुमोदित करवाना आवश्यक होगा। ये नियम टेलीविजन, रेडियो, सार्वजनिक प्रदर्शन स्क्रीन, ई पेपर, SMS, वॉइस मैसेज और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म प्रसारित होने वाले विज्ञापनों पर लागू होगा। अमेरिका, इसराइल और ईरान संघर्ष तेजी से बढ़ रहा है। प्रमुख ऊर्जा ठिकानों पर ताजा सैन्य हमले और जवाबी कार्रवाई से क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है, जिससे ईद उल फित्र और नवरोज का जश्न पर भी असर पड़ा है। अमरीकी प्रशासन ने बताया है कि समुद्र में फंसे ईरानी तेल पर लगाए गए प्रतिबंधों में 1 महीने की छूट होगी, ताकि बढ़ती तेल कीमतों को नियंत्रित किया जा सके। ये छूट कल तक जहाजों पर लदे ईरानी तेल पर लागू होगी और अगले महीने की 19 तारीख तक प्रभावी रहेगी। विदेश मंत्रालय की तथ्य जांच इकाई ने उन दावों का खंडन किया है, जिनमें कहा गया था कि अमेरिका ने पश्चिमी भारत से ईरान पर बमबारी करने के लिए सैन्य संसाधनों का समर्थन करने का अनुरोध किया था। मंत्रालय ने लोगों से सोशल मीडिया पर इस तरह के झूठे और निराधार दावों और पोस्ट से सतर्क रहने का आग्रह किया है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA ने देशभर में आक्रामक विदेशी प्रजातियों से उत्पन्न पारिस्थितिक और सामाजिक आर्थिक जोखिमों से निपटने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। ये निर्णय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT की कार्रवाई के बाद लिया गया है। देशभर में आज ईद उल फित्र का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। रमजान के पवित्र महीने के बाद आने वाला यह त्यौहार भाईचारे और सौहार्द का संदेश देता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को ईद उल फित्र की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन ने आज सरहुल पर्व के अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि सरहुल पर्व वृक्षों पर नए फूलों के आगमन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि यह पर्व आदिवासी समुदाय की सामूहिक चेतना और प्रकृति के साथ उनके गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। ऑर्लियंस मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज फ्रांस में महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में भारत की तन्वी शर्मा का सामना जापान की नोजोमी ओकुहारा से होगा। तन्वी ने कल क्वार्टर फाइनल में जापान की नात्सुकी निदेरा को हराया था। दूसरे सेमीफाइनल में ईशारानी बरुआ का सामना पिचामोन ओप्टिनपुत से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।